ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा रचे हुए राजसूय अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की महिमा बहुत ही न्यारी है। निराकार परमपिता परमात्मा शिव कैसे साकार होता है, जिस तन का माध्यम लेता है वो सृष्टि का आदि पुरुष आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती जगदम्बा उन सब के द्वारा रचे हुए इस विशाल मानव सृष्टि की एक अद्भुत गाथा, कहां से शुरुआत हुई, कहां से पहुंचे, कहां चले, कैसे चले, एक जीवंत बड़ा गजब का रोमांचकारी मनोहारी अद्भुत एक रहस्यमयी एक यात्रा है। और उस यात्रा में चलते चलते आज हम कहां तक पहुंच चुके हैं, जो आप एक विशाल वृक्ष देख रहे हैं, जो इतना यहां पर आके ज्ञान सरोवर का आनंद ले रहे हैं, ये यात्रा का जो पड़ाव मिला है हमें इतना सुखद, हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे हैं, उसकी गजब की गाथा है। उस यात्रा का एक जीवंत इतिहास हमारे बीच में, उस घटना के साथ जुड़ी हैं हमारी आदरणीय शीलू बहन जी। इस पूरी गाथा को हमारी पूर्व दादी जी मनोहर इंद्र दादी बहुत प्यार से बहुत स्नेह से ऐसे सुनाती थी, क्योंकि वो जीवंत इतिहास उनके सामने आंखों देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, साथ में रहे, अभी तक चले, वो देखा, जब सुनाती थी बहुत आनंद आता था। और आज हमारे बीच में उनके बाद हमारी आदरणीय शीलू बहन जिस तरह से सुनाती हैं, वो सारा इतिहास हमारी आंखों के आगे जीवंत हो जाता है। तो आंखों देखा हाल आप सुनेंगे अपने और अपने पिता के और अपने इस परिवार की गाथा को हम सब आदरणीय शीलू बहन के द्वारा सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ शीलू बहन जी का अभिनंदन करें।
एक हाथ की ताली सबको बताइए।
हमारे यहाँ आप जानते हैं कि कवि और दूसरे लोग उनके लिए उनको जीवंत और जोश में उमंग में लाने के लिए अगर ताली ना बजाया जाए तो सब कुछ खाली खाली लगता है, लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ बहुत कुछ सब साइलेंट में होता है, तो एक हाथ की ताली होती है उसको यूं कहते हैं। धन्यवाद देंगे हम सब हाथ उठा के शीलू बहन जी का, और सुनेंगे उनके मुखारबिंद से सरस्वती की वो अमृत धारा जो उनके मुखारबिंद से निकलते सुनने योग्य होता है। हम आपका अभिनंदन करते हैं शीलू बहन जी के साथ।
ओम शांति। सभी कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। जोर से आवाज नहीं आई, ओम शांति। अभी अभी हम सब ने एक मधुर गीत सुना, भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया, नव युग का निर्माण करने शिव ने जिसमें स्थान लिया। तो वो कौन थे दिव्य पुरुष जिसमें शिव ने स्थान लिया और नव युग के निर्माण के लिए उन्हें आगे किया और उनका नाम ब्रह्मा रखा, आदि देव जगत पिता ब्रह्मा, जिसके द्वारा नई सृष्टि जो सतयुगी सृष्टि है उसकी रचना करने के निमित्त बनाया। और मेरा भी यह सौभाग्य रहा है कि बचपन में मैंने बाबा को देखा था, क्योंकि 1959 दिसंबर में मैं संस्था से जुड़ी केवल 11 साल की उम्र में, और 59 से 69 तक बाबा के अनुभव किए, पढ़ाई भी करती रही और ये ज्ञान भी लेती रही। और बाबा ने मुझे देखकर बहुत सुंदर वरदान दिए थे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी बॉम्बे में, और बाबा के सामने मैंने इंग्लिश में भाषण किया था, छोटी थी, तो बाबा बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हो, तुम और होशियार हो जाओ तो बाबा तुमको विदेश भेजेगा। ये बाबा ने उस समय वरदान दिया था। तो बाबा का वो वरदान कैसे सिद्ध हुआ और आज बाबा हमें किस प्रकार विदेश की सेवा भी कराते हैं। और दूसरा, बाबा ने एक वरदान दिया था, क्योंकि घर में सबका आग्रह था कि मैं डॉक्टर बनूं, 67 की ये बात है, और बाबा को मैंने पत्र लिखा, बाबा ने पत्र में मुझे जवाब दिया। पत्र बाबा लिखते थे, जवाब देते थे हर पत्र का जवाब। तो बाबा ने मुझे पत्र लिखा कि बच्ची आप में बाबा की बहुत उम्मीद है, आप को विश्व की सेवा करनी है, इसलिए रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो, यानी मेडिकल लाइन लेने की बजाय ये आध्यात्मिक लाइन, रूहानी डॉक्टर बनो, आत्मा का डॉक्टर बनो और विश्व की सेवा करो। तो फिर उसके बाद कैसे मैंने अपना विचार में यही लक्ष्य रखा कि मुझे तो यही सेवा करनी है। फिर तो ग्रेजुएशन किया और 69 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर फिर समर्पित हुई। वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा को मैंने केवल देखा ही नहीं, परंतु मैं एक नाच से कह सकती हूँ कि ब्रह्मा बाबा से मैंने डायरेक्ट अलौकिक जन्म लिया। बाबा बॉम्बे में आए थे 1959 में, मलबार हिल, वहाँ एक बिल्डिंग है ब्लू हेवन, बाबा उनके लिए, मैंने बाबा के लिए वो मकान किराए पर लिया था। बाबा बॉम्बे अक्सर आया करते थे और 3-3 मास बाबा बॉम्बे में रहते थे, खास करके सर्दी के दिनों में, ठंडी में, क्योंकि बॉम्बे में ठंडी तो इतनी होती नहीं, और यहाँ माउंट आबू में उन दिनों में बहुत ठंडी होती थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा बॉम्बे आते थे, तो कैसे मेरी लौकिक माँ मुझे बाबा के पास ले गई, वो भी एक साल से जाती रहती थी और बाबा बॉम्बे में आए तो बाबा, तो मेरी लौकिक माँ मुझे ले गई बाबा के पास। और जैसे ही मैंने बाबा को देखा, तुरंत मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि यही मेरे सच्चे पिता हैं, क्योंकि मैं केवल 3 दिन की थी, ये शरीर 3 दिन का था, और मेरे फादर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो मैंने तो अपने पिता को देखा ही नहीं। परंतु जब मैं 11 साल की हुई और मेरी मदर को बाबा का ये ज्ञान मिला, मैंने 58 में मिला मैं, और मुझे 59 में वो ले गई, और जैसे ही बाबा को देखा तो मुझे लगा मेरे सच्चे पिता मुझे मिल गए हैं। तो बस मैं देख रही थी कैसे बाबा सबसे मिल रहे हैं, बाबा के कैसे बच्चे नज़दीक जा रहे हैं, बाबा उनको वरदान दे रहे हैं। तो जैसे सुई पर कैसे, यानी चुंबक आकर्षित करता है और वो सुई चुंबक पर चिपक जाती है, इस प्रकार मुझे अनुभव हुआ। और बाबा ने कहा आओ बच्ची, आओ बच्ची, तो जैसे मैं भाग करके बिल्कुल बाबा के पास गई और चिपक गई बाबा को, छोटी तो थी, 11 साल की थी केवल, और बाबा ने मुझे उसी समय वरदान दिया कि बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गए, ये बाबा ने मुझे कहा। और जब जन्म हुआ, मेरे फादर की 3 दिन के बाद डेथ हुई, लेकिन सुबह सुबह मेरी मदर को बाबा का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने जैसे सुबह सुबह उनको अनुभव हुआ मेरी मदर को कि एक फरिश्ता उनके सामने खड़े हैं सफेद वस्त्र में बिल्कुल लाइट के आकार में और जैसे वो ऐसे कर रहे हैं और मां को संकेत दे रहे हैं कह रहे हैं कि ये बच्ची मेरी है मुझे दे दो मैं इनका पिता हूं। और मेरी लौकिक माँ जैसे मुझे मैं 3 दिन की थी केवल मुझे उठा के उनको दे रही है ऐसे मतलब माँ ने जो अनुभव सुनाया जैसे उसको दे दिया उनको मुझे दे दिया और एक सेकंड में वो गायब हो गए दिया और गायब हो गए। तो उसके बाद मेरी मदर को तो समझ में नहीं आया ये क्या मैंने अनुभव किया तो हम तो वहीं थे कोई गायब तो नहीं हो गए लेकिन वो दृश्य गायब हो गया मुझे उसने दे दिया बाबा को। और उसी दिन समाचार उनको मिला कि किस प्रकार एक्सीडेंट हुआ और उनकी मेरे फादर की डेथ हुई तो उनके मन में जरूर ये था ये कौन थे और कैसे कहा कि मैं इनका पिता हूं ये उनको समझ में नहीं आया मदर को। लेकिन किस प्रकार ये जीवन का एक राज है कहां कौन जन्म देता है कौन पालता है। फिर तो मेरे अपने बुआ के पास पली बॉम्बे में मदर अपने मायके चली गई छोटी थी यंग एज थी केवल 18 साल की थी मैं पहली संतान थी। तो किस प्रकार जन्म किसने दिया पाला किसने और फिर कैसे आज इस स्थिति तक पहुंचाया किसने तो ये भी एक बहुत सुंदर अनुभव है जीवन का। तो कैसे परमात्मा ने इनको पिता श्री प्रजा पिता ब्रह्मा कहा आदि देव विश्व का रचयिता। हम तो अब तक यही समझते थे कि ब्रह्मा माना 4 मुख वाले ब्रह्मा और या विष्णु की नाभि से निकला ब्रह्मा कई बार आकाश में बादलों के बीच ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं तो कई समझते हैं कि वो इस आकार सृष्टि में कैसे होगा। अवश्य वो फरिश्ते के रूप में भी है लेकिन प्रजा पिता है जगत पिता के रूप में जगत में चाहिए। और ब्रह्मा को अक्सर करके बुजुर्ग दिखाते दाढ़ी वाला दिखाते आप खेर ब्रह्मा में जाइए पुष्कर में जाइए क्योंकि ब्रह्मा के बहुत मंदिर नहीं है विष्णु के तो बहुत मिलेंगे शंकर के बहुत मिलेंगे पर ब्रह्मा के नहीं मिलेंगे। कई कहानियां इसके पीछे लेकिन वो जगत के थे साकार में मनुष्य रूप में थे। और ऐसे भी नहीं कि ये संसार था ही नहीं और परमात्मा ने बनाया लेकिन कलयुगी सृष्टि को कैसे परिवर्तित कर सतयुग बनाया जिसके लिए इनको माध्यम बनाया और नाम रखा ब्रह्मा। उनका क्या पूर्व जीवन था और फिर कैसे परिवर्तन हुआ और एक व्यक्ति के परिवर्तन से आज अनेकों का जीवन परिवर्तित हो चुका है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों भाई बहनें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते परिवार में रहते अपनी जिम्मेदारियां संभालते इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं। तो एक बीज उन्होंने रोपा और आज वट वृक्ष की तरह यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में 137 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है 5ों ही खंडों में और वहां से हजारों भाई बहने हर साल यहाँ आते हैं जैसे आप बैठे हैं इसी हॉल में आकर के वे आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करते हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा का पूर्व जीवन कैसा था ये उनका पुराना एक फोटो है। उनके 5 बच्चे थे 3 बेटियां 2 बेटे। अब कई पूछते अभी वो कहाँ हैं तो उनमें से केवल 1 बेटी और 1 बेटा जीवित है बाकी तो सब देह छोड़ चुके हैं, तो वे बॉम्बे में रहते हैं, एक बेटा एक बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चे जरूर हैं। तो पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जिनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू, इस नाम से बाबा हैदराबाद सिंध में एक प्रसिद्ध जौहरी थे, रहते हैदराबाद सिंध में थे पर उनकी दुकान कलकत्ता में थी, पार्टनर वहीं कलकत्ता में रहते थे और बाबा अप डाउन करते रहते थे, क्योंकि जैसे आपने उस दिन ड्रामा में देखा कि बाबा हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे, तो ट्रैवलिंग बाबा ही करते थे। बाबा के जो ग्राहक थे वो उस समय के राजाएं महाराजाएं थे, अब वो तो नहीं आएंगे उनकी दुकान पर, और रानियां तो वैसे भी महलों से निकलती नहीं थी, महलों में ही रहती थी, चार मानो घूंघट में रहती थी। तो राजाएं अपनी रानियों के लिए गहने बनवाते थे तो बाबा को बुलाते थे, और कैसे बाबा उनके महल में जाते थे, उदयपुर के राजा, बीकानेर के, जोधपुर के, जयपुर के, नेपाल के, इन सब राजाओं के पास बाबा अक्सर जाते थे। और उस दिन तो ड्रामा में दिखाया कि कैसे बच्ची को पहनाया सब गहने, बहू को पहनाया, और बाबा उनको भी लेके जाते थे। तो वो रानियां कहती थी ये तो बहुत अच्छा है जो इनको पड़ा, मुझे ऐसा ही चाहिए। तो कैसे बाबा की पत्नी तो नहीं जाती थी, बहू बेटी को लेके जाते थे, बहुत ही सुंदर थी वो, तो कैसे उनके लिए भी बना के ले जाते थे, भाई यही पसंद करेगी नहीं, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है तो बहू बेटियों को पहना करके ले जाते थे ताकि वो ये पसंद करें। लेकिन कैसे बाबा कहाँ से कहाँ पहुंचे, एक साधारण हैदराबाद के भी एक गांव में आपका जन्म हुआ था, इनके पिता एक स्कूल, ऑर्डिनरी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, तो बचपन में कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए एक ही जीवन काल में, ये बाबा की जीवन कहानी शुरू की पहले की थी। तो बहुत धनी थे, पर जितने ही धनी थे उतने ही बाबा बहुत बड़े दानी थे, क्योंकि इतना महान कार्य उनको कराना था तो दान के ही उनके हाथ होते थे। तो कैसे ब्रह्मा बने, उनका जीवन वृतांत जो हम सुनते हैं, पिताश्री ब्रह्मा बाबा का जन्म 1876 में हुआ और 1936 में, जबकि उनकी आयु लगभग 60 वर्ष की हो चली थी, तब उनके जीवन में ये परिवर्तन आया। उसके पूर्व तो बाबा धनी थे, दानी थे, कोई भी उनके द्वार पर आता कभी हाथ खाली नहीं जाता, साधु संत महात्माएं उनके घर में आते थे, सत्संग करते थे, तो ये उनका पूर्व जीवन था। और विष्णु के पक्के भक्त थे, विष्णु उनके इष्ट थे, कट्टर वल्लभाचारी, पक्के वैष्णव, अक्सर श्रीनाथ द्वारे में आते थे और वहां पूजा पाठ कराना, भोग लगवाना, ये उनका नित्य कर्म था। लेकिन कोई भी ऐसा भारत का बड़ा मंदिर नहीं था जहां बाबा दर्शन करने भी न गए हो। अमरनाथ भी बाबा गए थे दर्शन करने के लिए। तो विष्णु की भक्ति करते थे, गीता का पाठ नित्य करते थे, गीता तो जैसे कंठस्थ थे उनको, और ट्रेन में ट्रैवल करते थे, बाबा प्लेन में कभी नहीं गए, ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे, और सवेरे ट्रेन में भी नहा धो करके पहले गीता का पाठ करते थे, फिर कुछ और काम, स्नान पानी करके, मुंह जूठा भी नहीं करते थे, स्नान पानी करके पहले गीता का पाठ फिर कुछ और कार्य। तो इतने बड़े भक्त थे, और जितने ही बड़े भक्त थे उतना ही बाबा एक सीकर थे, सत्यता को जानने की उनमें इच्छा थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया इस संसार में, क्या है जीवन का लक्ष्य, कहाँ जाना है मुझे। और उसके लिए अक्सर करके संतों से पूछते थे। कई संत साधुओं के पास बाबा गए, यहाँ तक कि कहते हैं कि 12 गुरु उन्होंने अपने जीवन काल में किए। नहीं तो व्यक्ति एक ही गुरु करता है, लेकिन बाबा ने 12 गुरु किए, क्योंकि एक एक से यही पूछता था सत्यता की खोज। और विष्णु के कट्टर भक्त उनका ही ध्यान करते थे। तो जैसे आपने उस दिन थोड़ी सी झलक देखी कि एक दिन वे विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे और अचानक उनको विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। बहुत ही सुंदर छवि विष्णु की उनके सामने आ गई, शंख चक्र गदा पद्मधारी उनके सामने आके खड़े हो गए। और उनको देखते ही बाबा हैरान हो गए, विष्णु चतुर्भुज उनके सामने खड़े हैं, उनका भव्य साक्षात्कार किया और जो वरदान दिया उनको, अहम चतुर्भुज तत् त्वम, ये एक बड़ा विचित्र वरदान था। क्योंकि जब भी किसी भक्त को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, फिल्मों में आप देखते हैं किसको देवी का दर्शन हुआ, किसको हनुमान का दर्शन हुआ, किसको किसका दर्शन हुआ, श्री कृष्ण उनके सामने आ गए, श्री राम उनके सामने आ गए, या जो भी इष्ट उनके सामने आए उनका दर्शन हुआ, तो वो इष्ट उनको जो वरदान देते हैं वो होता है तथास्तु, माना आपकी इच्छा पूरी होगी वैसा ही होगा, तथास्तु। पर बाबा को कोई इच्छा नहीं थी, संसार की कोई इच्छा नहीं थी, भरपूर थे, कोई कमी नहीं थी, भगवान से कभी वे कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन अवश्य सत्य को जानने की इच्छा थी। इसलिए शास्त्र भी खूब पढ़ डाले, बहुत गुरु किए, बहुत तीर्थ किए, न जाने क्या क्या किया होगा अपने 60 वर्ष की आयु में। पर ये अचानक विष्णु का जो साक्षात्कार हुआ और वरदान मिला, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अब एक के बाद एक विष्णु के कई रूप उनके सामने आ गए, अलग अलग रूप उनके सामने आ गए। भारत में विष्णु के कई मंदिर है, श्रीनाथ, जगन्नाथ, बालाजी, ये सब विष्णु के ही अलग अलग स्वरूप है। और वो सब स्वरूप उनके सामने आते गए और सब ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। तो जब बाबा ध्यान से नीचे उतरे तो वो ही आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, तत्त्वम तत्त्वम, इसका क्या मतलब है, मैं कैसे इनके समान हूं, मैं तो इनका भक्त हूं, मैं तो विष्णु की भक्ति कर रहा हूं, मैं थोड़ी कोई भगवान हूं, क्योंकि विष्णु को ही भगवान मानते थे, तो मैं ये नहीं हूं, मैं कैसे हो सकता, इसका मतलब क्या है। तब बाबा अपने गुरु के पास गए और गुरु ने उनको जब ध्यान से सुना उस बात को, तो गुरु को भी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या, लेकिन एक बात जरूर गुरु ने उनको कही कि हो सकता है आप इतने महान हो, इतनी आपके अंदर गुण है, विशेषताएं हैं, तो हो सकता है भगवान को आपसे कुछ कराना होगा, आगे चल के ये भेद खुल सकता है कि भगवान को आपसे कुछ कराना, उनका कार्य आपको करना है, ये जरूर गुरु ने उनको बताया। अब जब ये बात सुनी तो उनके मन में और प्रश्न उठने लगे, भगवान को मुझसे कुछ कराना है, क्या कराना है, हे भगवान ये भी तो मुझे बताओ। तो गुरु से पूछा क्या कराना होगा भगवान को मुझसे, तो गुरु ने उनको एक राय दी, उसके लिए एकांतवास में चले जाओ। तो हो सकता है उस एकांतवास में आप चले जाएंगे तो परमात्मा की आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी और आपको शायद और अनुभव हो और आपको भगवान इशारा देंगे कि क्या वो आपसे कराना चाहते हैं। तो कैसे बाबा अपने परिवार से छुट्टी लेकर हैदराबाद सिंध से बनारस चले गए। बनारस में उनके मित्र की कोठी थी, और वे अक्सर उनके मित्र बुलाते रहते थे, कभी आइए गंगा घाट पर बैठिए कुछ, क्योंकि बाबा ने अपने पिता को, क्योंकि पिता जब बुजुर्ग हो गए तो पिता ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उस समय तो यही था कि बस मुझे अभी, मैं वानप्रस्थ हो चुका हूँ, संन्यास लेना है, मुझे बस गंगा के पास छोड़ दो, मैं गंगा किनारे रहूंगा, संतों का संग करूंगा। तो बाबा उनको बनारस में एक मकान लेकर के छोड़ के आए थे, नौकर चाकर देकर के आए थे। माँ तो बचपन से गुजर गई थी, तो उनको देकर आए थे कि आप अभी संतों का संग करो, गंगा का, गंगा के किनारे रहो। परंतु लास्ट तक पिता की पालना उसने की और वो पिता उनका बनारस में उसने दे त्याग किया। तो बाबा जाते रहते थे बनारस, परंतु एकांतवास के लिए अपने बिजनेस को कुछ समय छोड़कर बाबा ने सोचा कि कुछ प्रेरणा मिले भगवान से, तो वे एकांतवास करने उनके मित्र के पास गए। तो कैसे अनायास एक दिन बाबा संध्या के समय विष्णु की भक्ति में तल्लीन थे और एकदम बाबा ने एक विचित्र दृश्य देखा, जिसमें बाबा ने विनाश के दृश्य देखे, भयंकर विनाश, तीन रूपों से विनाश। एक था अणुयुद्ध के रूप में विनाश देखा, कैसे हवाई जहाजों से कुछ चीज नीचे गिर रही थी और वो आग का रूप लेती जा रही थी, और देखते ही देखते बाबा ने देखा किस प्रकार दुनिया जल का राख हो गई बिल्कुल। तो ये न्यूक्लियर वॉर के रूप में बाबा ने विनाश का दृश्य देखा। दूसरा था गृह युद्ध के रूप में विनाश, जिसमें बाबा ने देखा कि किस प्रकार लोग एक दो का गला काट रहे हैं, बंदूकें चला रहे हैं, गोलियां चल रही है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, मार रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे गृह युद्ध में होता है। और देखते देखते बाबा ने देखा कि किस प्रकार चारों ओर खून ही खून, रक्त की नदियां और शवें पड़ी है, जैसे शमशान बन गया। बाबा को कुछ समझ में नहीं आया ये मैं क्या देख रहा हूं। और फिर थोड़ी देर के बाद एक तीसरा दृश्य देखा प्राकृतिक आपदाओं का, पांचों ही तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पांचों ही तत्व इतना कहर मचा रहे हैं, जो सब कुछ खत्म हो करके जैसे जलमय हो गई, प्रलय हो गई, इस प्रकार का दृश्य बाबा ने देखा। बड़ा विचित्र दृश्य था, बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रही, एकदम रोने लगे, हे भगवान मुझे क्या दिखा रहे हो, क्या ये संसार ऐसे ही खत्म हो जाएगा, फिर इतना सुंदर संसार जो आपने बनाया ये क्या खत्म होने लिए बनाया, मानो इस प्रकार के प्रश्न बाबा के मन में उठे। लेकिन उससे एक वैराग्य जीवन में आ गया, बहुत जबरदस्त वैराग्य, कि हे भगवान मुझे ये बताओ भी मुझे क्या करना है, अगर ये संसार ऐसे नष्ट तो होना ही है पर मुझे क्या करना है। तो प्रश्न तो फिर भी था मन में, और फिर अचानक कैसे एक दिन, उसी खोज में तो थे ही, तो कैसे बाबा को परम धाम का साक्षात्कार हुआ और बाबा ने देखा अखंड ज्योति का महतत्व, सुनहरा लाल प्रकाश जो स्वप्रकाशित महतत्व है, कोई सूर्य चांद सितारों का उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, उनका अपना ही प्रकाश है। और उस प्रकाश की दुनिया में छोटे 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 सितारे चमक रहे हैं, एक उल्टे झाड़ की तरह देखा, जिसका बीज ऊपर है और झाड़ नीचे। वैसे भी मनुष्य सृष्टि को एक उल्टे झाड़ के साथ तुलना की गई है, गीता में आता है ऊर्ध्व मूल अध: शाखा, ये संसार एक उल्टा झाड़ है जिसका मूल ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे। और मेरा निवास जहाँ सूर्य चांद सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। ये परम धाम का साक्षात्कार उनको हुआ और उस ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिस ज्योति में बाबा ने देखा वो परम ज्योति बहुत ही प्रकाशमय, और उसमें से छोटे 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 सितारे इस धरती पर उतर रहे, धीरे धीरे उतर रहे, कुछ
विचित्र सा अनुभव बाबा ने किया और देखते ही देखते बाबा ने देखा कैसे एक और विनाश हुआ और एक सुंदर दुनिया जो पंच तत्व सब नष्ट हो चुके थे धीरे धीरे एक सुंदर दुनिया के रूप में बदल रहे। पांचों ही तत्व का एक सुंदरतम स्वरूप बाबा ने देखा और एक एक सितारा धरती पर उतरते उतरते एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता जा रहा है और यह संसार इतना सुंदर बन गया है जहां देवी देवताएं विचरण कर रहे हैं। पांचों ही तत्व का एक सुंदरतम स्वरूप जो वर्णन भी बाबा नहीं कर सके ऐसा उसने अनुभव किया और फिर देखा कैसे उस सुनहरे सोने हीरे से जड़ित एक महल से लक्ष्मी नारायण बाहर आए और धीरे धीरे एक सुंदर बगीचे में विचरण करने लगे और ये दृश्य देखते देखते बाबा तो मोहित हो गए और फिर एक आवाज आई। ये आवाज बड़ी गहरी आवाज थी जैसे एक आकाशवाणी उसको मिली, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी महाविनाश के बाद ये सतयुगी दुनिया आनी है, उठो जागो और आपको ये दुनिया बनानी है। तो बाबा को तो समझ में नहीं आया ये दुनिया मुझे बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास क्या शक्ति है। मतलब बाबा को मन नहीं आया कि ये दुनिया मुझे बनानी है, ये कौन मुझे कह रहा है ये भी समझ में नहीं आया और कैसे मैं ये दुनिया बनाऊंगी ये भी समझ में नहीं आया, बनाऊंगा ये भी समझ में नहीं आया। लेकिन खैर ये अनुभव किया। अब उसके बाद बाबा को लगा कि भगवान ने काम दिया है लेकिन मैं बनारस में बैठकर तो ये नहीं कर सकूंगा, उसके लिए कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं कलकत्ता जाता हूँ अपने अपने भागीदार से मिलता हूँ। तो बाबा बनारस से कलकत्ता गए और कलकत्ता में गए और वहां अपने भागीदार को बता दिया सारा कि ऐसे ऐसे मैंने ये अनुभव किया है, भगवान मुझसे कुछ कराना चाहता है, अब मैं ये हीरों का व्यापार नहीं कर सकता हूँ। और हीरे तो बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे, दृष्टि बदल गई, जितनी उनकी परख शक्ति थी ये सब कुछ हीरे तो उनको दिखे ही नहीं, मैं ये क्या व्यापार कर सकूंगा। और उसी समय बाबा को एक तार आई घर से, हैदराबाद सिंध से, बहुत समय हो गया था बाबा घर नहीं गए थे क्योंकि बनारस में ही थे और उनको पता चल गया कि बाबा कलकत्ता में गए हैं, ये तो बाबा बताते थे उनको, परंतु बाबा को पोतरे का जन्म हुआ था और इसके कारण दादाजी को तो बुलाएंगे, तो बुला रहे थे तो तार गई कि जल्दी आ जाओ। अब बाबा तो यहाँ नशे में थे क्योंकि भगवान का उनको कार्य मिला है और अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं, तो भागीदार तो नहीं चाहते थे क्योंकि जिस प्रकार ये जाते थे हीरे जवाहरात के व्यापार के लिए राजाओं महाराजाओं के पास, अंग्रेज लोग भारत में जरूर आते थे, कलकत्ता से ही आते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था उस समय, ये 36 की बात, 35-36 यही उस समय था। तो बाबा की बातें सुन के तो पार्टनर तो हैरान हो गए, पर खैर अपने पार्टनर को समझा दिया कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता, भगवान ने मुझे सच्चे हीरों का व्यापार करने लिए आदेश दिया है। तो अपना जो हिस्सा था वो उसने लिया और भागीदार को दुकान दे दिया। अब ये नशा तो था ही, तो जैसे उनको तार आई कि जल्दी आओ, तो तार में टेलीग्राम होती थी उस समय, ये ईमेल और फैक्स ये तो कुछ था ही नहीं, तो टेलीग्राम में बाबा ने जवाब भेजा, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को हुआ रेल का राही। ये टेलीग्राम भेजी, घर वालों ने टेलीग्राम पढ़ी को समझ में नहीं आया, टेलीग्राम अलफ को अल्लाह मिला क्या मतलब है इसका, कौन सा अलफ कौन सा बे, बे को मिली झूठी बादशाही अर्थात अलफ खुद, उनको तो भगवान मिल गया, और बे माना उनके पार्टनर, तो उनको दुकान दे दिया। तो अलफ को अल्हा मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलफ को, मुझे तार आपकी मिली, हुआ रेल का राही, मैं ट्रेन से हैदराबाद आ रहा हूँ। तो लास्ट सेंटेंस समझ में आया परिवार वालों को कि मैं के हुआ रेल का राही, ट्रेन से आ रहा हूँ। लेकिन जब बाबा वापस पहुंचे तो बिल्कुल बदले हुए, कहाँ ठाट वाट सूट सूट कोट पैंट, मतलब जो उनका ठाट था, लकड़ी हाथ में लेते थे, राजाओं की तरह ही चलते थे, बड़ा हाँ वो उसका ठाट वाट ही वैसा ही था, परंतु बिल्कुल बदल गए एकदम, धोती कुर्ता साधारण कपड़े पहने तो, और एकदम एकांत में रहते थे, जैसे उनका कोई लेना देना नहीं है। परिवार वाले बड़ा रिस्पेक्ट करते थे कि बाबा को कुछ अनुभव हुए। तो कैसे, एक दिन की बात है कि बाबा को अचानक अपने कमरे में ये ज्योति का साक्षात्कार हुआ। ज्योति यानी ऐसी ज्योति जो कोई तेज भी नहीं था, बहुत गर्म भी नहीं था, आग भी नहीं थी, पर बहुत ही सुंदर, शीतल, प्रकाशवान और शक्तिशाली, जैसे उनको बहुत शक्ति आ रही उनसे, पर कोई तेज भी नहीं है जो आंखों को लगे। बहुत देर तक बाबा जैसे उसको देखते रहे देखते रहे, और फिर बाबा ने क्या देखा कि वो जो प्रकाश था, लाइट, वो तेज, वो उनके अंदर में प्रवेश हो गया। ये बाबा ने देखा, अनुभव किया, और आंखें तो बंद थी। अब ये अनुभव उनकी बहू ने देखा, माना कैसे बाबा की आंखें बंद है और एकदम बाबा के चेहरे पर प्रकाश ही प्रकाश है, तेज है एकदम। तो उनकी बहू को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये तेज कहां से आ रहा है, और आंखें बंद थी, और आंखें बंद और बाबा के होंठ चल रहे थे, होंठ में वो शब्द निकल रहे थे जो उनकी बहू ने सुने। वो शब्द क्या थे? मैं निज आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। बस ये शब्द निकलते गए उनके मुख से, गहरी आवाज उनके मुख से निकल रही है, मानो शिव परमात्मा का उनको साक्षात्कार हुआ, और कैसे उनकी प्रवेशता हुई, आंखें बंद, और उनकी बहू तो वहीं बैठी रही, देखती रही देखती रही, और जैसे बाबा ने आंखें खोली तो आंखें भी लाल लाल चमक थी, ललाट चमक रहा था, कोई बाहर की लाइट नहीं थी पर बाबा के चारों ओर लाइट वो भी अनुभव कर रही थी। और बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कि एक प्रकाश था, लाइट थी, वो मैंने अनुभव की। तो उनकी बहू को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? कि जो बाबा को देखता उनकी दृष्टि में, उनकी आंखों में, उनको बाबा से श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे। एकदम बुजुर्ग व्यक्ति, और वो बुजुर्गपना खत्म, और एक छोटा बच्चा श्री कृष्ण के रूप में वो देखते थे। अब ये एक बड़ी न्यूज बन गई कि दादा लेखराज के पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता है उनको श्री कृष्ण के दर्शन होते, साक्षात्कार होते। या बाबा की किस दृष्टि किस पर पड़ी, वो ध्यान में चली गई, उनकी बहू बेटी बच्चे मानो बाबा को देखते ध्यान में चले जाते थे, उनको कृष्ण के दर्शन होते थे। तो बाबा तो रोज सुबह सत्संग करते ही थे, कराते ही थे, क्योंकि गीता पाठ तो रोज बाबा करते थे, उनके घर वाले रोज स्नान करके, बिल्कुल एक नित्य नियम था सबका कि सवेरे सवेरे नहा धो करके पहले बाबा सत्संग करते थे, गीता सुनाते थे, फिर और कुछ काम। तो अब जब ये न्यूज फैल गई तो दूर दूर से लोग आने लगे, देखें ये साक्षात्कार होता है बाबा से। अब एक तो बाबा से हुआ तो उनको भी हुआ, इतनी बड़ी न्यूज बन गई जो 1936 में टाइम मैगजीन अमेरिका से निकलती है, इंटरनेशनल मैगजीन है, बहुत पुरानी, उस मैगजीन में भी ये न्यूज आई कि दादा लेखराज नाम का एक व्यक्ति हैदराबाद सिंध में है, उसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। और वहां की लोकल न्यूज़पेपर में तो बहुत न्यूज आई, वो एक पैसे की कुल्फी मिलती थी, कुल्फी वाले आते थे, एक पैसे कुल्फी, एक पैसे कुल्फी, तो वो न्यूज में वो दे दिया, जिस प्रकार एक पैसे कुल्फी वैसे एक पैसे साक्षात्कार, एक पैसे साक्षात्कार, ऐसे न्यूज, तो उन्होंने न्यूज बना दी थी उस हिसाब से। अब इतना ही नहीं, उससे और आगे चमत्कार क्या हुआ कि लोगों को घर बैठे जिन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं था, उनको घर बैठे श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे, घर बैठे, और श्री कृष्ण जैसे उनके सामने खड़ा है या रास कर रहा है, अब जैसे उनके नजदीक जा रहे हैं, वो कृष्ण दूर हो गया और बाबा सामने खड़े हैं, और कृष्ण दूर से इशारा कर रहा है मेरे से मिलना, तो इनके पास जाओ, क्योंकि ऐसे तो मैं मिलूंगा नहीं, इनके पास जाओ वहां मैं मिलूंगा। अब ये कौन थे, तो कई तो जानते नहीं थे, लेकिन जो जानते थे वो बाबा के पास जाते थे। परंतु तो एक बात और फैल गई कि बाबा के पास जाने से आत्मा को शांति मिलती है, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि करते थे, ओम, और जैसे ओम की ध्वनि करते थे तो उसी समय भी जो भी ध्यान में जो बैठे होते थे वे सब ध्यान में चले जाते थे, सारे ओम की ध्वनि से। अब कैसे ये मम्मा है जिनको हम अलौकिक माँ के रूप में जानते हैं, आपका बाबा के साथ कोई संबंध नहीं था, लौकिक में कोई संबंध नहीं था, आप 15-16 साल की थी, इनके लौकिक पिता की डेथ हो गई थी, क्योंकि बिजनेसमैन थे और वे बॉम्बे, श्रीलंका में और कई देशों में उन बाबा उनकी उनके फादर की बिजनेस थी, तो बिजनेस में इन्होंने देवाला मारा था, तो बहुत सदमा पहुंचा था और इनके फादर की डेथ हो गई। अब वहां कोई स्त्री विधवा बन जाए हैदराबाद सिंध में उस समय, तो मानो एक प्रकार की कैसे कहर हो गया उस बेचारी विधवा के लिए, पति गुजर गया, तो एक साल तक काले काले कपड़े पहनकर बाल खुले छाती पीटते रहना, वो बाहर कहीं जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि कहीं बाहर जाती तो लोग उनको देखना नहीं पसंद करते थे, और अगर भूल से भी किसी दुकान के पास से गुजरी तो जाने के बाद वो पानी फेंकेंगे कि कोई अपशगुन न हो, मां ये इसका इनको देख लिया, तो इसलिए वो कहीं नहीं जाती थी और रोती रहती थी। अब ये इनका नाम राधे था, तो क्या हुआ कि ये बहुत ही फेमस थी लड़की हैदराबाद सिंध में, पिता तो नामी ग्रामी थे पर ये भी कम नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अवार्ड्स लेती थी स्कूल में, गीत गाती थी, भजन गाती थी, सितार बजाती थी, डांस करती थी, तो अवार्ड्स लिए थे, कई कलाओं में इसने अवार्ड्स लिए थे, परंतु थोड़ी मॉडर्न जमाने की थी, क्योंकि पिता के साथ ये भी ट्रैवलिंग करती थी, माँ तो नहीं करती थी, और माँ की ये हालत देख करके बच्ची से रहा नहीं गया, तो किसने उनको कहा इनको बाबा के पास ले जाओ, क्योंकि माँ तो रो ही रही थी, तो माँ को ये बाबा के पास ले गए। तो जैसे ही इनकी माँ बाबा के सामने आई, बाबा को देखा, तुरंत उससे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, उनकी मदर को, इनको कुछ नहीं हुआ, इनकी माँ को हुआ, और कृष्ण का दर्शन करते करते वो हंसने लगी, रोती रोती आई और हंसती रही। अब ये भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती हुई दादा के पास आई और हंसने लगी। अब ये न्यूज बन जाती है, लोकल न्यूज तो बनी जाती है। अब इस प्रकार बहुत सारी आती गई और एक क्रांति फैल गई, क्योंकि कन्याएं, माताएं, छोटी छोटी बहनें वो बाबा के सामने आती थी, वो उनको दर्शन होते थे, बड़ों को नहीं होते थे, किसी को होते थे किसी को नहीं, लेकिन कन्याओं को बहुत होने लगे। तो एक दूसरी बहन जो दादी प्रकाशमणि, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 38 साल तक इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया बाबा के अव्यक्त होने के बाद, जिनका नाम लौकिक में रमा था और बाबा ने उनका प्यार से नाम रखा था कुमार का, बहुत स्वीट थे, तो ये भी 15 साल की उम्र में ज्ञान में आई। इनकी कहानी फिर दूसरे प्रकार की है। इन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं था, पर इनकी मत इनके फादर ज्योतिषी थे और ये कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। तो ज्योतिषी ने पिता ने इनकी जन्म पत्री जब निकाली तो अनुभव किया कि मेरी बेटी कृष्ण को अपना जीवन देगी, मीरा बाई की तरह बनेगी, बस कृष्ण ही इनका सब कुछ होगा, अपना जीवन उनको समर्पित करेगी। तो पिता का बेटी में बहुत बहुत उनके अंदर भावना थी कि मेरी बेटी तो मीरा बाई की तरह है। अब ये भी स्कूल पढ़ती थी, भी उस समय 15 साल की थी, और मम्मा जो बाद में मम्मा बनी जराधे थी, और ये दोनों फ्रेंड्स थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो मम्मा को ये देखती थी, राधे को देखती थी, ये कैसे ज्ञान में आई है और कुछ, पर उनको ज्यादा समझ नहीं थी। तो सवेरे सवेरे इसने भी एक अनुभव किया, कृष्ण का दर्शन किया, पर इसको समझ में नहीं आया ये क्या मैंने देखा। बस श्री कृष्ण को देखा रास करता हुआ अमृत वेले 4 बजे के समय, पर इसने किसको बताया नहीं, क्योंकि उस समय कहते थे अगर किसी को कुछ अनुभव हो तो बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ध्यान जो है ना फिर उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी अगर ऐसा कोई साक्षात्कार किया है तो। इसने किसी को नहीं बताया। अब जब स्कूल गई तो एक चर्चा हो रही थी फ्रेंड्स के बीच में कि दादा लेखराज है उनके वहां जाने से कृष्ण के दर्शन होते हैं, तो इसको भी कहा तुम भी चलो तुम भी चलो। इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं। तो जब ये घर गई शाम को, पिता ने ही उसको कहा, ये जब तक पूछे ही पूछे, पिता ने कहा बेटी हमने यहां सुना या जो दादा लेखराज के पास जाते उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम भी जाओ देख कर आओ क्या होता है वहां। अब ये अगले दिन जैसे आई अपने सहेलियों के साथ, वह जैसे ही बाबा को देखा ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने लगी, एकदम कृष्ण के साथ रास कर रही आंखें बंद। अब इस प्रकार का अनुभव कन्याओं माताओं को हुआ, तो ये क्रांतिकारी बात थी। दो क्रांतिकारी बातें उस समय हुई, पहले कन्याएं माताएं आई बहुत, पुरुष कम आए, कन्याएं माताएं ज्यादा आई। और उस समय नारी शोषित थी, 4 दीवारों में कैद, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ भी सोसाइटी में समाज में उनका कोई नाम नहीं था, कोई स्थान नहीं था। 4 दीवारों में रहना, घूंघट निकाल करके घर में ही रहना बस, और कुछ नहीं। और पुरुष लोग जो थे सिंधी सिंध वर्ग की कहते थे, हैदराबाद सिंध के, वे बड़े बिजनेसमैन थे, सारी दुनिया में उनकी बिजनेस होती थी, सिंगापुर हांगकांग जापान अमेरिका लंदन, मानो बिजनेस। और स्त्रियां बिचारी 4 दीवारों में कैद। अब इनको जब ये अनुभव हुआ तो बाबा इनको जानते नहीं थे लेकिन इनके पिता को जानते थे। तो क्या हुआ कि ये जब ध्यान से नीचे उतरी तो बाबा ने इनको देखा और इनको बुलाया, और बुला करके क्या है उस समय बाबा, उन दिनों में बाबा ने एक स्कूल खोला हुआ था, ये भी साथ साथ चला, एक बच्चों का स्कूल खोला था, बहुत बड़ा मकान बना करके स्कूल खोला था, इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। तो बाबा को उन टीचर्स की जरूरत थी जो अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करे, नौकरी करने के खातिर बच्चों को पढ़ाए ये लक्ष्य नहीं था बाबा का, तनखा लेवे ये लक्ष्य नहीं, लेकिन बच्चों को आध्यात्मिक बातें भी सिखाए। तो बाबा दादी प्रकाशमणि के बारे में, कुमारका के बारे में जानते थे कि ये गीता बहुत पढ़ी हुई है और ये गीता का ज्ञान बहुत अच्छा दे सकती है, तो इन ये स्कूल में टीचर बने। तो बाबा ने उनको बुलाकर कहा कि तुम अपने पिता से पूछ के आओ, क्योंकि तुमको तो पिता ने कहा है तुम तो श्री कृष्ण को समर्पित हो जाओगी, तो पिता से चिट्ठी लेकर के आओ कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित कर रहा हूं। तो ये गई पिता को कहने, तो पिता ने कहा बेटी क्यों नहीं, आप तो हो ही श्री कृष्ण को अर्पित। बस अगले दिन से ये स्कूल नहीं गई दादी प्रकाशमणि, मतलब कुमार का रमा कहते थे, और बाबा को समर्पित हो गई, और मम्मा भी समर्पित हो गई, राधे भी समर्पित हो गई। इस प्रकार बाबा के पास समर्पित होने लगी बहनें। ये कैसे चमत्कारिक शक्ति थी, उस समय भगवान का ये कार्य शुरू हुआ। अब क्या हुआ, शिव परमात्मा ने ये आदेश दिया सबको, जो भी वहां आए बच्चे सहित, परमात्मा ने आदेश दिया कि सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये भगवान का आदेश मिला तो बाबा ने भी प्रतिज्ञा की। वो तो फैमिली में थे, अपने परिवार में रहते थे, तो जो उस समय सत्संग में आए सब ने ये प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये न्यूज भी फैल गई, पवित्र और योगी बनाएंगे, तो कईयों ने विरोध किया उस समय, जैसे आपने उस दिन ड्रामा में देखा, लेकिन वो तो एक नाटक के हिसाब से था, ऐसा तो क्या मारा होगा जिस प्रकार वर्णन किया, लेकिन विरोध जरूर किया। अब ये बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं, वो ईश्वरीय शक्ति कुछ कर रही है। मानो एक तीसरी क्रांतिकारी बात, पहली क्रांतिकारी बात थी साक्षात्कारों की, दूसरी क्रांतिकारी बात थी कि कन्याई माताएं ज्यादा आने लगी, उनको ज्यादा साक्षात्कार होने लगे, और तीसरी थी कि सबसे परमात्मा ने ये प्रतिज्ञा करवा ली कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। क्योंकि सतयुगी दुनिया की स्थापना, देवी देवता धर्म की स्थापना, देवताओं को फिर से सृष्टि पर लाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है, इसलिए ये संकल्प परमात्मा ने ही दिया। तो जब लोग कहते थे ऐसे कैसे किया, तो बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ईश्वर की शक्ति है। पर देखते देखते कैसे सब समर्पित होती गई, और फिर बाबा ने देखा ये तो बहुत आ गई, तो बाबा हैदराबाद से कराची चले गए, और कराची में बाबा ने मकान लेकर के लगभग 385 भाई बहने को जैसे उस समय समर्पित हो गए, और उनको मानो एक बिल्कुल एक आश्रय दिया, और 385 भाई बहनों ने 14 साल तक 1937 से लेके 1950 तक तपस्या की 14 साल, और 14 साल दुनिया का मुंह नहीं देखा, मानो अंदर ही अंदर जहां वे रहे और तपस्या की। और उस समय दो बातें हुई इन 14 सालों में जिससे दुनिया का नक्शा बदल गया। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 39 से लेकर 45 तक 6 साल तक विश्व युद्ध हुआ, और वो विश्व युद्ध अमेरिका ने तब जीता जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया, वो आप जानते हैं। तो कैसे जापान ने सरेंडर किया और अमेरिका जीत गया, युद्ध समाप्त हो गया, और उसके बाद तो यूरोप में कम्युनिज्म आ गया, यूएसएसआर बना, ये सब लेनिन स्टालिन ये सब उस समय की बात है। और भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई महात्मा गांधी ने उस प्रकार से छेड़ी। अब 1947 में आप जानते हैं पार्टीशन हुआ भारत में। अब उस पार्टीशन के समय कितना बड़ा जबरदस्त सिविल वॉर का रूप हो गया, रक्त की नदियां बही पार्टीशन में, और कैसे वहां के सारे हिंदू सिख भारत में आए। पर ये संस्था वहीं थी, क्यों ये संस्था वहीं थी, क्योंकि सिंध का जो चीफ मिनिस्टर था जो उस समय, वो बाबा का बड़ा दोस्त था, बड़ा मित्र था बाबा का, उसने कहा कि आप यहां से मत जाएं, हम आपको पूरी सुरक्षा देंगे, आप यहां से मत जाएं, आप यहां रहेंगे तो हमारा देश पाक बन सकता है, पाक माना शुद्ध पवित्र, तो आप मत जाएं। अब ये 47 की बात थी और ये संस्था तो वहीं थी। तो इन 14 सालों में कैसे कराची में, हाँ, सागर के किनारे जाते थे, वहां एक्सरसाइज करते थे, सागर किनारे तपस्या करते थे, वहां क्लिफ्टन बीच है कराची में, बहुत सुंदर है क्लिफ्टन बीच, तो वहां जाकर जाते थे। ये सब 385 कुमारियां बहनें माताएं भाई थोड़े से थे, और बाबा उनको कैसे ये शर्ट पैंट पहनाते थे, मना बिल्कुल अपने अंदर में एक हिम्मत रखो, एक स्वच्छ सशक्तिकरण का अनुभव वे करते थे, तपस्या करते थे, मानो एक शक्ति उनको दिलाई। और ये उस समय की युवा अवस्था में बहनें जो बाद में हमारी दादियां कहलाई, दादी माना बड़ी बहन, ये दादियां कहलाई, सब उस समय छोटी छोटी, कोई 15 साल 16 साल 12 साल 18 साल उस प्रकार की थी। और फिर 1950 में जब भारत गणतंत्र बन गया, उस समय परमात्मा का आदेश मिला उनको, क्योंकि कई बहनें ट्रांस में जाती थी, ट्रांस में बहुत कुछ अनुभव करते थे, आदेश उनको मिलते थे और शिव परमात्मा उन ब्रह्मा बाबा के मुख से वाणी चलाते थे। बहुत कुछ हुआ 14 सालों में। हम दादियों से पूछते थे 14 साल आपने किया क्या, तो दादियां बताती 14 साल क्या, और लगा 14 महीने 14 दिन लगे, क्योंकि इतना कुछ उनको बाबा अंदर ही अंदर अनुभव कराते थे और नई शक्ति भरते थे। तो कैसे आखिर परमात्मा का आदेश मिला कि भारत जाओ, और भारत विश्व का लाइट हाउस बनेगा, सारे विश्व को का गुरु बन करके विश्व को शांति का दान देगा, ये भारत करेगा, विश्व गुरु बनेगा, और आध्यात्मिकता का प्रसार प्रचार भारत से होना है, और उसमें आपको विश्व को शांति का दान देना है, इसलिए भारत में जाओ। ये बाबा को जैसे शिव परमात्मा का आदेश मिला, और ये भी आदेश मिला कि कराची तो सागर के किनारे था, अब आप भारत में कहाँ जाए, इतना बड़ा भारत, तो ये भी आदेश मिला एक पहाड़ पर जाओ, और वो पहाड़ जहां से आप विश्व को शांति का दान दे सकेंगे। तो सरकार का इतना सहयोग था कि एक जहाज भी दिया उन्होंने, एक जहाज दिया, चीफ मिनिस्टर का पूरा सहयोग था, तो गवर्नमेंट का की मदद थी पूरी, और वो पूरा जहाज दिया कि आप यहां से जो कुछ भी आपका सब ले जाओ, क्योंकि उस समय जो भारत में आए वहां से एक सुई तक भी नहीं ला सके, कुछ नहीं, हाथ खाली, नंगे पैर, जेब खाली, भाग कर आए, जान बचाई, यही बहुत कुछ था। तो और इनको कहा कि आप सब कुछ ले जाओ, क्योंकि शांति हो गई थी, गणतंत्र बन गया था, सब कुछ सेटल हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन दोनों देशों का सब कुछ तैयार हो गया था, तो नेचुरली बाबा को ये कहा। तो जहाज में ये बैठे हैं, कैसे बाबा बैठे हैं, और ये बिल्कुल शांति से, और कराची से ये आबू बहुत ही निकट है, बहुत पास है, आप माउंट आबू में आए हैं तो आप पीस पार्क जाएंगे, वहां अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ये 4000 फीट की ऊंचाई पर है, पहाड़ है, और आप नीचे देखेंगे 4000 फीट से तो देखेंगे प्लेन्स, और उस तरफ पहाड़ है, पहाड़ के पीछे ही कराची है, कराची बहुत दूर नहीं है यहाँ से, ये वेस्टर्न बॉर्डर है भारत का, तो कराची यहाँ से ही पास है। तो बाय शिप आए और ओखा बंदरगाह, ओखा हार्बर हार्बर है सौराष्ट्र में, वहां पर ये जहाज उतरा और वहां से बाय ट्रेन आबू रोड आए। अब ये माउंट आबू क्यों चुना बाबा ने, इसकी भी कहानी है कि उस समय यहाँ माउंट आबू में कई मंदिर है, कई आश्रम है, कई होटल है, लेकिन ये जो होटल्स हैं ये पहले राजाओं के महल थे। यहाँ राजस्थान के चारों ओर जो छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स थी उनके अलग अलग राजाएं थे, उन्होंने गर्मी के दिनों में यहाँ महल बना के रखे थे ताकि वे यहाँ आकर अप्रैल में जून में गर्मियों में यहाँ रहते थे। ये समर रिसोर्ट था, समर कैपिटल राजाओं महाराजाओं के लिए, क्योंकि गर्मी होती थी प्लेन्स में और यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है अप्रैल में जून में, तो यहाँ आकर के गर्मियों में रहते थे। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, जो राजा महाराजा क्या ठाट से रहते थे, यहाँ बीकानेर पैलेस है, तो क्या हुआ जब भारत गणतंत्र बना तो सारी राजाई तो खत्म हो गई, राजाएं विलय, उन्होंने विलय किया भारत के गणतंत्र में, परंतु उनको ये कहा गया कि अभी इतना सारा आप जो लैंड रखा, जो कुछ रखा, उसकी सीलिंग लगाई, कुछ कंट्रोल किया, और बाकी तो उन्होंने गवर्नमेंट को देना पड़ा और कुछ को बेचना पड़ा, कुछ और करना पड़ा, क्योंकि बहुत उनके पास लैंड होता था। तो यहाँ जो उन्होंने महल बनाए उनको होटल बना दिया, होटल्स यहाँ आप जयपुर पैलेस, बीकानेर पैलेस, जोधपुर पैलेस, ये सब यहाँ है, सब होटल है अभी। तो बीकानेर पैलेस में मैं एक बार गई थी, जो होटल है बीकानेर पैलेस नाम का होटल है यहाँ, तो बीकानेर के राजा यहाँ आते थे, तो कैसे आते थे वो, जब मैनेजर है होटल का वो अपना अनुभव सुनाता है, बहुत बुजुर्ग है, वो कहता है जब राजा यहाँ आता था उस समय ये जो रोड है ये तो अंग्रेजों ने बनाया, पहले रोड नहीं होता था, दिलवाड़ा मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध जैन टेम्पल 1000 साल पहले बना, पूरा मार्बल का है। तो मार्बल कहाँ से लाते थे? नीचे बहुत मार्बल है, आबू रोड के पास बहुत मार्बल मिलता है, तो हाथी और घोड़ों पर लाते थे। उनकी भी यादगार है दिलवाड़ा मंदिर में, जिन हाथी और घोड़ों पर मार्बल लाद करके लाते थे। तो राजा महाराजा लोग भी हाथी पर विराजमान होकर के माउंट आबू आते थे, और अकेले नहीं आते थे, वे कम से कम 500 लोग उनके साथ हाथी घोड़ों पर आते थे। तो मुझे बताया उसने कि इतना उनका ठाट था राजाओं का कि जिस गाय का वो राजा दूध पीता था वो गाय भी साथ में आती थी, क्योंकि उसी का ही दूध पीना है और किसी का नहीं, टेस्ट बदल जाएगी औरों की, और गाय पी के का दूध लेंगे तो। यानी कहने का भाव है कि अभी भी आप वो देखने जाएंगे तो क्या शान है उन होटलों में जो राजाओं के महल है, केवल जयपुर जोधपुर में ही नहीं है, यहाँ भी है उनका। तो अब उस समय जब उनको चेंज करना पड़ा सारा, तो बाबा ने एक स्थान लिया जो बीकानेर, जो ब्रिज कोठी भरतपुर राजा का महल था वो बाबा ने लिया, और उस वहां पर आकर के स्थायी हुए। परंतु बाबा के गुरु थे, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं, तो वहां आप आबू जाइए। उनके गुरु ने ये कहा कि आबू का स्थान उन्होंने ही मानो कहा, राय दी। तो यहाँ आश्रम भी बहुत है गुरुओं के, तो उनका आश्रम है यहाँ माउंट आबू में, पर बहुत छोटा है, वहाँ 50 लोग मुश्किल से रह सकते हैं, स्वामी कोई नाम है यहाँ उनका आश्रम है। तो वो जब देखा हो तो बहुत ही छोटा है, यहाँ तो 385 भाई बहने थे, वो कहाँ रहेंगे। तो देखिए ये ट्रेन से आ रहे हैं और 14 साल के बाद दुनिया देख रहे हैं, और फिर यहाँ आबू रोड स्टेशन पर उतरे, ओखा से ट्रेन डायरेक्ट यहाँ आती थी, और कैसे मम्मा उनके साथ है, उस समय ये ड्रेस ऐसे पहनते थे। और जब माउंट आबू आए तो ब्रिज कोठी भरतपुर राजा की कोठी है, वो इस समय होटल है जहाँ आप लोगों ने टोल टैक्स भरी होगी, वहीं पर वो महल है, तो वहां रहे। उसके बाद धौलपुर हाउस जो आज राजस्थान सर्किट हाउस है वहां कुछ समय रहे, लेकिन बाबा ने माउंट आबू में आकर के बहुत तपस्या की। और फिर अब क्या हुआ कि तपस्या तो यहाँ हुई, मम्मा बाबा, मम्मा जब आई तो 16 साल की थी, बाबा तो 60 साल के थे, अलौकिक रूप में बाप बेटी, लेकिन माँ कहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सारा मम्मा को दिया, और उस समय बाबा ने के पास जो कुछ प्रॉपर्टी थी उस समय 737 में, वो माताओं बहनों को सपोर्ट करती, अपनी सारी प्रॉपर्टी मम्मा और उनके साथ 4 मुख्य बहनें थी विल कर दी। तो मम्मा लीडर थी और उनके साथ सारी बहनें इनके साथ थी। तो कैसे यहाँ तपस्या करते थे पहाड़ों में, और 1952 में हमारा पहला सेवा केंद्र दिल्ली में खुला। ये कैसे खुला, अभी सतीश भाई ने जैसे आपको बताया कि मनोहर दादी जी से मैंने ये सब बातें सुनी, तो मनोहर दादी जी ये 12 साल की उम्र में ये संस्था में आई, छोटी थी हैदराबाद सिंध में, और आते ही इनको भी बहुत साक्षात्कार हुए, तो ये भी समर्पित हो गई। अब जैसे ये माउंट आबू आए तो जो माउंट आबू में बना बहनी है उनके रिश्तेदार तो पहले आ गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ करके, तो उनको पता चला कि ये सब आबू में आए हैं, तो इनके रिश्तेदार भाई बहने बहुत थे, वो दिल्ली में रहते थे, तो उन्होंने आए और उनको निमंत्रण दिया कि आप दिल्ली चलो, और आपने जो इतना सारा सुना है, इतना अनुभव किया है, हमको भी ये शेयर करो, हम भी ये समझना चाहेंगे ये क्या कार्य है, ये संस्था क्या कर रही है। तो बाबा ने इनको कहा जाओ दिल्ली। तो ये जैसे दिल्ली गई, 1952 की बात है, दिल्ली गई और इसने ज्ञान देना शुरू किया, तो ये भी ओम की ध्वनि करती थी, तो जैसे ओम की ध्वनि की, इनसे जो भी उनके घर वाले थे देवी का साक्षात्कार होने लगा। अब ये और चमत्कार होने लगे, देवी दुर्गा जैसे खड़ी है शेर पर बैठी सवारी, अम्बा माँ का साक्षात्कार, और फिर मंदिरों से निमंत्रण मिला कि आप हमारे पास आकर के भाषण कीजिए। तो मंदिरों में जाकर के भाषण करती थी, तो वहां भी भक्तों को इनसे देवी का साक्षात्कार हुआ। फिर तो मंदिर भी छोटे पड़ने लगे, 1952 की बात है। फिर ये क्या करती थी, जमुना के किनारे बैठ करके सत्संग करती थी, तो वहां पर भी सत्संग में बहुत लोग आते थे। अब एक मास तक इसने दिल्ली में बहुत सेवा की, फिर इसको लगा मैं वापस जाऊं माउंट आबू। तो माउंट आबू तो वहां के लोग कहने लगे, आपने हमको इतना ज्ञान दिया, इतना हमें अच्छा लगा, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप यहीं रह जाओ। तो बाबा को इसने लिखा, बाबा ने कहा बच्ची अगर वो आपको कह रहे हैं रह जाओ तो उनको एक बात कहो कि हमको एक मकान लेकर के दो, हम रह सकते लेकिन अलग मकान लेवे और फिर वहां हम सत्संग करेंगे। तो उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मकान आपको लेके देंगे हम और हम सब किराया देंगे और हम सब जिम्मेदारी लेंगे, आप केवल हमें सत्संग कराइए। तो पहला सेवा केंद्र हमारा दिल्ली में खुला और मनोहर इंदिरा दादी उनके लिए निमित्त बनी। और फिर तो बहुत सारे सेवा केंद्र खुले, वो तो बहुत कहानियां हैं। तो कैसे फिर वहां से भाई बहने माउंट आबू आते थे, ये मम्मा बाबा दादी प्रकाशमणि आप देख रहे हैं, उस समय छोटी थी और बाबा मम्मा के साथ, मम्मा के साथ अधिकतर दादी प्रकाशमणि रहती थी और मम्मा भी ट्रैवल करती थी चारों ओर। ये लखनऊ में केंद्र खुले, कानपुर में खुले, बाबा भी जाते थे, यूपी में बहुत निमंत्रण मिले क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे गए। और फिर तो मम्मा के साथ दादी प्रकाशमणि रहती थी, उनको मुन्नी मम्मा कहते थे, 3/4 मदर जैसे, क्योंकि मम्मा के संस्कार बहुत मिलते जुलते थे और बहुत तपस्या करती थी। और मम्मा तो बहुत आगे बढ़ी अपनी तपस्या में, विदेह अवस्था में। और फिर 1965 24 जून को मम्मा ने 46 इयर्स की उम्र में अपना देह त्याग किया 65 में। मानो वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। और उसके बाद दीदी मनमोहिनी वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। दीदी मनमोहिनी की भी कहानी है। दीदी मनमोहिनी बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल है, उनकी ही बेटी है। तो इनकी विशेषता क्या थी, जब ये समर्पित हुई, इनके माता पिता तो बहुत धनवान थे और ये बेटी को जैसे ये बाबा के सामने आई इनको भी कृष्ण के दर्शन हुए। तो जस लोक माना जसुमती लोकुमल, ये इनके चाचा चाची थे जिन्होंने बॉम्बे में केसी कॉलेज, किशनचंद चेलाराम कॉलेज खोला। तो जैसे पाकिस्तान से सिंधी लोग आए, उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल्स और स्कूल कॉलेजेस बहुत खोले बॉम्बे में, तो विशेष रूप से। तो उनकी ये बेटी थी। तो ये भी जब समर्पित हो, ये भी बड़ी न्यूज बन गई कि गोपी इनका नाम था, ये समर्पित हो गई, मानो बहुत न्यूज बनती थी उस समय। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी और मम्मा के बाद फिर बाबा बहुत जाते थे। बॉम्बे का एक दृश्य है, छोटे बच्चे बाबा के आगे गीत कविता गा रहे हैं। और माउंट आबू में आने लगे, ये पांडव भवन का दृश्य है जहां मम्मा के बाद बाबा और दीदी मनमोहिनी जो बैठी है नीचे, वो यहाँ रहते थे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे और फैमिलीज की फैमिलीज यहाँ आती थी। चारों ओर सेवा केंद्र खुलते गए, ये सब परिवार के परिवार बाबा के साथ हैं। और बाबा ये बॉम्बे में गए हुए हैं ब्लू हेवन, इसलिए ये खास मुझे पसंद है। उस समय बाबा बॉम्बे में आए थे, दादी प्रकाशमणि वहीं रहती थी, बाबा अपने हाथ से प्रसाद देते थे। हम भी वहां पीछे में कहीं बैठे हैं, छोटे थे हम, 11 साल की उम्र थी हमारी। और कैसे बाबा अपने हाथ से सबको प्रसाद देते थे, वरदान देते थे। और ये माउंट आबू का दृश्य है, दीदी मनमोहिनी इनके साथ हैं और भी कई हैं। और बाबा जैसे बताया पत्र लिखते थे, तो मुझे भी बाबा ने ऐसे पत्र लिखा था। और जहां पत्र लिखते थे वह बाबा की झोपड़ी है, आप पांडव भवन जो मेन हेडक्वार्टर्स है वहां जाएंगे, ये बाबा की झोपड़ी है जहां बाबा दिन के समय पत्र लिखते थे। जो पुराना हमारा ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में, ये 1958 में यहां आके एस्टैब्लिश हुए। उसके पहले ढोलपुर हाउस था जो अभी राजस्थान सर्किट हाउस है, उसके पहले भरतपुर राजा की कोठी थी। तो ये पोकरान हाउस कहलाता था। पोकरान, पोकरान वो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जहां एटम बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट हुआ, भारत गवर्नमेंट सरकार ने किया। तो वो मकान या वो जमीन, जमीन ज्यादा थी, मकान इतना बड़ा नहीं था, तो वो उनसे खरीद लिया। और ये बाबा की झोपड़ी, बाबा हर साल झोपड़ी बनवाते थे जहां गर्मी के दिनों में बाबा रहते थे। यहाँ खजूर के पेड़ बहुत है माउंट आबू में, तो खजूर के ताजे पेड़ के ताजे पत्तों से बाबा झोपड़ी बनवाते थे और दिन के समय अंदर बैठते थे, बहुत ठंडक होती थी। और बाबा पत्र लिखते थे, इंडिविजुअल किससे मिलते थे। अभी तो उसको परमानेंट बना दिया, बांस की लकड़ियों से परमानेंट कर दिया, लेकिन स्थान वही है। ये बहुत सुंदर स्थान है, आप पांडव भवन जाएंगे वहां देखेंगे। तो ये एक हमारा मानो तीर्थ है, चार धाम बाबा के। यहाँ बाबा दिन में बैठते थे और ये हिस्ट्री हॉल है जहाँ बाबा वाणी चलाते थे, ज्ञान की मुरली चलाते थे। ये दो गद्दियां बाबा की है, एक बाबा की एक मम्मा की, और बाबा गद्दी पर बैठ करके वाणी चलाते थे। मम्मा भी वाणी चलाती थी यहाँ। 1965 में मम्मा ने पांडव भवन में ही शरीर छोड़ा था। तो ये हिस्ट्री हॉल का दृश्य है जहाँ बाबा की वाणी चलती थी और चारों ओर ये सारे चित्र फोटोज लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम हिस्ट्री हॉल रखा है। और कैसे बाबा मम्मा ने सारे विश्व को इनवाइट किया, आओ बच्चे आओ बच्चे, साक्षात्कार होते रहे। और सबका मालिक एक है, परमात्मा है। यहाँ कोई भी धर्म, जाति, भाषा, प्राण, देश, आयु की कोई का कोई बंधन नहीं है। हर एक आत्मा ये ज्ञान ले सकती है। और 1869 18 जनवरी को बाबा ने अपना देह त्याग किया, 93 वर्ष की उम्र में। लास्ट तक बाबा ने कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी चश्मा नहीं लगाया। और ये कमरा है बाबा का, वही खटिया है जहां बाबा बैठे थे। रात्रि को बाबा क्लास करा करके हिस्ट्री हॉल से आए और आकर के पलंग पर बैठे। हिस्ट्री हॉल जो आपने देखा, उसके गेट पर बाबा खड़े हुए जाने से पहले और 3 शब्दों का उच्चारण किया और फिर बाबा कमरे में गए। जो 3 शब्द क्या थे, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, ये बाबा ने कहा। छुट्टी माना विदाई। बाबा कभी ये शब्द नहीं कहते थे, हमेशा गुड नाइट, नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते कहते थे, पर छुट्टी नहीं। अब उस दिन बाबा ने रात के लगभग 9:15 बजे थे बाबा ने छुट्टी कहा और बाबा कमरे में चले गए। और यहाँ कमरे में आए करीब 9 बजे थे रात के। और जैसे पलंग पर बैठे, दादी प्रकाशमणि उनके नजदीक गई, बाबा के पास गई। बाबा पलंग पर बैठे, दादी उनके सामने, बाबा की आंखें बंद और ऐसे बैठे थे। और दादी ने देखा बाबा बिल्कुल बिल्कुल जैसे न्यारे हो रहे, क्या बात है, दादी सामने खड़ी आंखें बंद है। तो दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा। तब दादी की उम्र कोई ज्यादा लंबी नहीं थी, 46-47 की होगी और बाबा तो 93 वर्ष के थे। बाबा 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 ऐसे कहा तो बाबा ने आंखें खोली और आंखें खोली जैसे दृष्टि दादी को दी और बाबा के हाथ दादी के हाथ में, बस कुछ कहा नहीं, एक सेकेंड में आत्मा उड़ गई। बाबा ने देह त्याग किया, अव्यक्त हो गए। दादी को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ, हाथ तो दादी ने बाबा के पकड़े हुए थे पर एकदम से ढीले हो गए हाथ, ये क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। तो बाबा को लिटाया और डॉक्टर को तो बुलाया, उस समय ग्लोबल हॉस्पिटल अपना नहीं था, तो डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने तो डिक्लेयर कर दिया नो मोर। परंतु वो दृष्टि और हाथ, उससे जो शक्ति दादी जी को मिली, उसने किसी को रोने नहीं दिया, किसी को रोने नहीं दिया। लेकिन रात भर टेलीग्राम्स किए सब तरफ कि आ जाओ, बाबा बुला रहे, ड्रामा। अब ये शब्द लिखे टेलीग्राम में तो रातों रात कई भाई बहने पहुंच गए और माउंट आबू आ गए। और कैसे ये तीन शब्द सबके कानों में गूंज रहे थे, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। और फिर 21 जनवरी को बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार पांडव भवन के अंदर ही किया गया, जिसका नाम अभी स्मारिका का नाम रखा है शांति स्तंभ। तो बाबा 18 जनवरी को अव्यक्त हुए और 21 जनवरी को बाबा का अंतिम संस्कार किया गया आश्रम में। और आज भी 18 जनवरी के दिन बहुत सारे हजारों भाई बहने आते हैं पिताश्री जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। कैसे पिताश्री जी ने सबको निमंत्रण दिया, आप आओ। ये शांति स्तंभ हमें स्मृति दिलाता है कि शिव परमात्मा के वे साकार माध्यम बने और शांति का ही प्रचार प्रसार सारे विश्व में किया। और अब भी वहां हम जाते हैं वो अनुभव होता है, बाबा के कमरे में जाते हैं वो अनुभव होता है, बाबा की झोपड़ी में जाते हैं वो अनुभव होता है कि जैसे बाबा हमारे साथ है। तो ये चार धाम हम कहते हैं ब्रह्मा बाबा के हैं, जहां जाते हैं लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे साथ है। और अब भी ब्रह्मा बाबा हमारे साथ हैं, ये अनुभव हम करते हैं। शिव पिता और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा अब भी वाणी चलाने आते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन 69 के बाद 2007 तक 38 साल दादी प्रकाशमणि जी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में रही। और दादी जी के काल में ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय रात दिन दुगनी रात चौगनी गति से इतना आगे बढ़ता गया जो हजारों सेवा केंद्र देश विदेश में खुल गए। और फिर तो ये दादियों ने ये भागदौड़ संभाला, क्योंकि ये बाबा ने कहा कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा गुप्त होंगे, शक्तियां मैदान में आएंगी। ये शिव शक्तियां विश्व को परमात्मा के नजदीक ले जाएंगी। यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का सम्मान है वहां देवताओं का वास है। अब ये शिव शक्तियां भारत को फिर से स्वर्ग बनाएगी। तो शक्तियों को आगे किया, शिव परमात्मा खुद ब्रह्मा पिता खुद रीढ़ की हड्डी की तरह हमारे बैकबोन है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं देती है लेकिन उसके बिना ये शरीर कहाँ खड़ा होगा। तो बाबा ने कहा अभी सूर्य और चंद्रमा छिप जाएंगे और ये सितारे धरती के सितारे धरती के आकाश में चमकेंगे। ये बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य अव्यक्त वाणियों में हम सुनते हैं, जो आज आप देख रहे हो कि कैसे ये लार्जेस्ट वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअली रन ऑर्गेनाइजेशन बाय वुमेन। तो कैसे हमारे जैसे ये बहनें समर्पित होकर के सेवाएं कर रही है। और फिर विदेशों में सेवा केंद्र भी खुले और ये पहला ग्रुप माउंट आबू आया 1974 में। हमारे सेवा केंद्र विदेशों में खुलते गए, ये पहला ग्रुप विदेशियों का आया है। और उसके बाद तो देश विदेश में और सेवाएं खुली हुई। ये 1983 में पांडव भवन के सामने ये बहुत बड़ा पहाड़ था और कैसे उसको तोड़ा गया और वहां बहुत सुंदर ओम शांति भवन बना है और यूनिवर्सल पीस हॉल बना है, जहां हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंसेस की, बड़े बहुत बड़े बड़े। और उस समय 1983 में हम यूएन के भी मेंबर बन गए एनजीओ के रूप में, और वहां के भी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल आदि आदि आते रहे हमारे प्रोग्राम्स में। ये संत सम्मेलन हुआ है हरिद्वार और बनारस से, बहुत सारे संत महात्माएं मां मंडलेश्वर आए हैं। और 91 में ये ज्ञान सरोवर की जमीन ली गई थी और 94-95 में इसका उद्घाटन हुआ था। बहुत ही उबड़ खाबड़ जमीन थी जो एकेडमी के रूप में आज आप देख रहे हो। 91 में ही ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में बना, जो भारत तो क्या मानो माउंट आबू के चारों ओर बहुत सारे गांव गांव में ये सेवा कर रहा है। कई गांव अडॉप्ट किए हैं, कई स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं माउंट आबू के, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ये हॉस्पिटल सेवाएं दे रहा है, जहां 80% जो स्टाफ है वो समर्पित रूप से सेवाएं कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, आप जरूर देखने जाएंगे। सब प्रकार की पैथीज है वहां, केवल एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, कई कई पैथीज वहां सेवाएं दे रही है अपनी, और समर्पित रूप से डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सारा है। और फिर ये जो आप नीचे शांति वन में गए होंगे या जाएंगे, डायमंड हॉल 96 में इस हॉल का उद्घाटन किया। उस समय इस संस्था की डायमंड जुबली मनाई तो 60 साल हो गए, तो 96 में इसका नाम डायमंड जुबली हॉल रखा, जहां 20,000 से भी अधिक भाई बहने आ सकते हैं, समा सकते हैं और हमारे कार्यक्रम उस हॉल में होते रहते हैं। और फिर दादी प्रकाशमणि जी ने 2007 में अपना देह त्याग किया और नीचे शांति वन में ही 85 साल की उम्र में दादी प्रकाशमणि जी ने अपना देह त्याग किया और उनका उनके देह का अंतिम संस्कार शांति वन में हुआ और उसका नाम रखा प्रकाश स्तंभ, दादी प्रकाशमणि के नाम पर। क्योंकि बहुत कैसे दिन रात दादी सेवा करती थी और इतना विशाल रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाया। और फिर तो दादी जानकी जी इस समय हमारी मुख्य प्रशासिका के रूप में हैं। दादी जानकी जी उस समय 20 साल की थी जब इस संस्था में आई और आज वो 96-97 रनिंग कंप्लीट किया है, लेकिन वेरी एक्टिव। इस समय दादी जानकी जी लंदन में हैं और थोड़े दिनों के बाद अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे। तो 97 इयर्स की उम्र में इतनी शार्प इंटेलेक्ट है इनकी, जो क्या बताएं। अभी तक भी एक किसी ने इनका ब्रेन टेस्ट किया था तो बहुत सुंदर उन्होंने इसकी रिपोर्ट दी कि द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ऐसा उनको इनको एक उनको एक सर्टिफिकेट दिया। तो ये दादी जी की विशेषता है। और कैसे हमारे यहाँ कुमारियों की टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती रहती है सब शांति वन में, जहाँ करीब 15,000 लोग रह सकते हैं। आप जाकर के देखेंगे वो विशाल, यहाँ तो हम फैला नहीं सकते माउंट आबू में क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है और यहाँ पर कोई और मकान भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन को यहाँ बैन कर दिया है, यहाँ और नहीं कर सकते। इसकी सौंदर्यता को बनाए रखने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता और आगे। लेकिन शांति वन नीचे आबू रोड वहाँ इसका बहुत विस्तार है और तो कैसे वहाँ हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं और जन सभाओं को भी दादी जानकी जी संबोधन करती है। और दादी जानकी के साथ हमारी सह मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी है। आप 9 साल की थी जब आप इस संस्था में आई, आप भी अपनी माँ के साथ आई। और इनकी फिर विशेषता है कि माँ को उस समय नहीं हुआ साक्षात्कार, बाद में हुआ, लेकिन इनको बाबा को देखते ही ये 9 साल की छोटी बच्ची ध्यान में चली गई और बहुत इनका ट्रांस का पार्ट है, बहुत साक्षात्कार करती है। और शिव परमात्मा और ब्रह्मा पिता की संपूर्ण आत्मा कैसे इनके तन में प्रविष्ट होते हैं। और हमारे पास जब हजारों की संख्या आती है तो विशेष कार्यक्रम होते हैं, तब जब शिव पिता और ब्रह्मा पिता इनके इनकी आत्मा इनके तन में प्रविष्ट होकर के अव्यक्त वाणी चलाते हैं, और उस समय तो इनका चेहरा ही बदल जाता है। आप देखेंगे बिल्कुल जैसे चेहरा बदला हुआ, आवाज भी बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, सब हाव भाव सब बदल जाता ही है। तो पता चलता है दादी जी नहीं है, दादी जी तो को तो जैसे बाबा उनको थोड़ा शांत कर देते, उनके संस्कार मर्ज कर देते, और बाप दादा जिसको हम कहते हैं वो अपना पाठ बजाते हैं इनके माध्यम से। हम इनको अव्यक्त बाप दादा कहते हैं। बाप माना पिता, दादा का दो अर्थ है, एक दादा माना बड़ा भाई, सिंधी भाषा में बड़े भाई को दादा कहते हैं, जैसे बड़ी बहन को दादी कहते हैं सिंधी भाषा में, दीदी कहते हैं हिंदी में, लेकिन सिंधी में दादी कहते हैं बड़ी बहन को, और दादा बड़े भाई को। तो शिव पिता माना पिता बाप, और दादा माना ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई, और अगर उसका दूसरा रूप लो हिंदी में तो बाप माना पिता और दादा माना ग्रैंडफादर, पिता का भी पिता। तो ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता और शिव बाबा हमारा ग्रैंडफादर, ब्रह्मा बाबा का भी पिता। तो बाप दादा का अवतरण होता है, पधरामणि होती है और अव्यक्त वाणी चलती है। लेकिन अवश्य जो भाई बहने आते हैं उनके लिए एक नियम होता है कि जो यहाँ की धारणाएं हैं वो जरूर उन धारणाओं पर चले, और परंतु ये लाइव टेलीकास्ट होता है, सभी सेवा केंद्रों पर जाता है, पीएम टीवी पर भी आता है, और हो सकता आप लोगों ने वहां पर अपने स्थान पर बैठे हुए देखा होगा। जिन्होंने देखा है हाथ उठाएं, देखिए आप सब देख रहे हैं, तो इसलिए अभी भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है पीएम टीवी पर, सब अपने घरों में भी सुन रहे हैं। तो सचमुच हम ये संसार को बताना चाहते हैं कि परमात्मा का ये दिव्य कार्य चल रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है, और परमात्मा कैसे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के माध्यम से अनेक आत्माओं को अपना उनका जीवन पवित्र और योगी बना रहे, ताकि सहज ही नए संसार की एक कलम लग रही है, और उसमें हम सब अवश्य एक नई दुनिया का अनुभव करेंगे, पर उसके लिए अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो कई लोग हमसे पूछते हैं आप इतना ऊंचा ज्ञान देते हो, आप लोगों की फीस क्या है, आप लोग कुछ डिमांड नहीं करते, आपकी कोई फीस नहीं है क्या? तो हम कहते हैं यहाँ की फीस है 5 खोटे पैसे। पांच खोटे पैसे, तैयार हो देने के लिए? तैयार हो? कौन से खोटे पैसे, कौन से खोटे पैसे, समझ गए ना? कौन से खोटे पैसे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 खोटे पैसे देके जाओ और 1 आना लेकर जाओ। 1 आना, आना माना 1 बार रोज आना, सेवा केंद्र पर रोज जाना, बस ये लेके जाओ और 5 खोटे पैसे देके जाओ। अब इतने बड़े तीर्थ स्थान पर आप आए हो, कुछ दान करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे ही चले जाएंगे? वो गीत है ना, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे, कुछ ले के जाएंगे। ये गीत आप भी गाएंगे या नहीं? कुछ दे के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, या यहाँ का यहीं क्या कहेंगे? नहीं, अवश्य कुछ दे के जाएंगे। तो भक्ति मार्ग में तो लोग जाते हैं तीर्थों पर, तो दान तो करते हैं, लेकिन थोड़ी ठगी करते हैं। क्या ठगी करते हैं? जो चीज पसंद नहीं है ना वो ही दान करते हैं। कोई बैंगन नहीं खाएगा, कहेगा बैंगन दान करके जाता हूँ, फलानी चीज दान करके जाता हूँ। लेकिन यहाँ शिव बाबा कहते हैं जो बुरी से बुरी आदत है आपके अंदर, कोई भी आदत बुरी आदत है, व्यसन है चलो वो ही, या जो चीज आपको दुख दे रही है वो आप दान करके जाओ भगवान के इस तीर्थ पर। और सचमुच मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि आपको इतनी शक्ति मिलेगी उस कमजोरी को, कमी को, कुछ बुराई को, विकार को, विकृति को, व्यसन को, जो भी आप समझते ये आप चाहते हो छोड़ना, पर छूटती नहीं है, आप यहां प्रतिज्ञा करके जाओ। और वो प्रतिज्ञा, वो संकल्प आपको इतना शक्ति देगा भगवान की, जो आप सहज यहां छोड़ सकेंगे। ये यहां से आप शक्ति लेके जाएंगे। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। तो बहुत कुछ आप यहां से लेके जा रहे हैं और अवश्य और भी लेकर जाएंगे। आज भी आपका कार्यक्रम है तो उसके बारे में आपको अधिक बताएंगे। अभी हम सब 3 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे।